بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرے شروع جی, سوال پوچھے.
سر میرا غور و فکر سے متعلق ایک سوال ہے,
ارشاد.
تھوڑا سا اور کلیئرٹی کے لیے.
جی جی.
سر یہ قرآن حکیم اور لاشعور میں غور و فکر کے چند انداز سے سوال ہے. استدلالی یعنی دلیل دے دے کر سوچنا اور استخراجی نتیجہ نکالا جاتا ہے.
جی.
یا نکلے ہوئے نتیجے کی روشنی میں بات کو طے کرنا.
جی جی.
جیسے قرآن میں کہہ دیا گیا ہے اس میں چوں چرا تو نہیں ہے سر, تو سر اس کی بات ذرا ایکسپلین کرنا تھا. استخراجی اور استدلالی, اس کو ڈیفرینشیٹ.
اصل میں یہ فلسفہ اور منطق کی دو اصطلاحات ہیں. جب آپ فلسفی پڑھتے ہیں یا منطق پڑھتے ہیں, لاجک, تو اس میں یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک نتیجہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی شرح کرتے ہیں. مثلا یہ کہ بھئی دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا. اب میں نے اسٹریٹ اوے نتیجہ بتا دیا کہ بھئی یہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ نے شیطان کو ڈیفیٹ کرنا ہے. یہ میں نے استخراج کیا ساری بات پہ سوچ سمجھ کے ایک چیز کو, یعنی کہ ڈیڈیوس کیا, اخذ کیا اور وہ آپ سے شیئر کر دیا. اب آپ نے کہا کہ بھی اس کو کیسے ثابت کریں گے, دلائل دیں. تو میں نے دلائل دینے شروع کیے کہ بھی دیکھیں جنت میں ہم رہتے تھے, وہاں اللہ نے ہمیں وارن کیا کہ اپنے درخت اس درخت کے قریب نہیں جانا اور اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی سے ہوشیار رہنا, یعنی شیطان سے بچ کے رہنا.
ٹھیک ہو گیا.
اب جب آپ وہاں شیطان کے بہکاوے میں آئے تو آپ کو جنت سے نکال دیا گیا, یعنی شیطان نے ہمارے لیے وہاں کیا حرکت مچائی کہ ہمیں وہاں جنت میں رہنے نہیں دیا. تو اگر ہم شیطان کو فالو کریں گے تو دلیل یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں جنت میں نہیں رہنے دیا تو ہمیں دنیا میں کیوں رہنے دے گا. یعنی جب میں نے ایک نتیجہ سنا کر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے تو یہ استدلالی انداز بیان ہو گیا. دیکھیں نا, یہ ساری بات ایک دلیل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے, ایک لاجیکل ریزننگ کی جا رہی ہے کہ بھئی شیطان نے ہمیں جنت سے نکلوایا, وہ ہمارا اتنا دشمن ہے, تو اگر ہم نے اس کو ڈیفیٹ نہ کیا تو ہم جنت میں تو واپس نہیں جا سکتے, اور اگر ہم نے اس کو جنت میں واپس جانے سے پہلے ڈیفیٹ نہ کیا تو کیا ہوگا, وہ ہمیں دنیا سے بھی نکلوا دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ بات دیکھیں نا, اب لاجیکلی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ اسے تسلیم بھی کر رہا ہے آپ کا ذہن. ٹھیک ہو گیا نا.
جی سر, لیکن بہت ساری دفعہ ایسا کہتے ہیں نا کہ قرآن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے.
ظاہر ہے, نہیں میں طرز استدلال کی بات کر رہا ہوں. دلیلیں تو قرآن نے جو اتنی بات سمجھانے کے لیے قرآن کیسی کیسی دلیلیں دے رہے ہیں. دیکھیے یہ قرآن ہمیں لاجیکلی ایک بات سمجھاتا ہے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم کے واقعے میں جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہ میرا رب ہے, لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے استدلال کیا, دلیل دی کہ ڈوبنے والا میرا رب کیسے ہو سکتا ہے.
بالکل صحیح.
دلیل دی, یعنی یہ دلائل ہیں کہ بھئی جو چیز اگر دیکھے نا, یہ رب علیحدہ ہو گیا تو میں کیسے برقرار رہا. میں تو ہوں ہی رب کی وجہ سے. غور کریں, ان کو وجدانی طور پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی, اللہ نے القا کیا یا وحی کی یا جو بھی کیا, उनके पल्ले पड़ गई बात के, जो चीज मुझसे अलग हो रही है, जो चीज गायब हो रही है, आफेलीन यानी जो हट रही है मुझसे, वो मेरा रब कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने चांद देखा, वो पहले से सितारे की नस्बत बड़ा भी था, रोशन भी था। उन्होंने समझा शायद ये है मेरा रब, ठीक है। लेकिन जब वो भी गरूब हो गया तो क्या कहा, फिर वही दलील कि भाई नहीं, जो अलग होता है वो रब नहीं हो सकता, रब अलग होता ही नहीं है। क्या इस्तदलाली अंदाज से अल्लाह रब्बे करीम हमारे पल्ले एक बात डालना चाह रहे। फिर उन्होंने सूरज देखा, अब वो सूरज की तमाजत और उसकी चमक देखकर उन्होंने समझा कि ये पहले दोनों से ज्यादा शानदार है, शायद ये है मेरा रब। वो एलिविएट कर रहा था, यानी उनका इनर सेल्फ, जब वो पहले दर्जे पे उन्होंने सितारे को निगेट कर दिया तो चांद दिखाया गया, चांद को निगेट किया तो सूरज दिखाया गया, जब सूरज को निगेट कर दिया तो वो असल बात समझ में आ गई उनको कि नहीं भाई नहीं, ये गैर रब की नफी जरूरी है। अब ये नतीजा निकला, ये इस्तखराज हो गया। दलाइल चलते रहे, इस्तदलाली, और फिर इस्तखराज क्या हुआ कि रब वो है जो मुझसे जुदा नहीं हो सकता, और मुझे उसको हासिल करने के लिए गैर रब की नफी करना जरूरी है, वरना मैं इन्हीं के साथ चिमटा रहूंगा। देखें, इसमें दोनों चीजें दिखा दी, नजर आ रही है कि इस्तखराज कैसे किया और इस्तदलाल कैसे किया। इसी तरह जब भी हम सोच विचार करते हैं तो या हमारे जहन में दलाइल चल रहे होते हैं या नतीजा उभर के आ रहे होते हैं। इसी को इस्तदलाली और इस्तखराजी, ये चूंकि वो फलसफियाना क्या कहते हैं इस्तलाहात थी, तो मैंने एक रोब डालने के लिए कि मुझे इनका भी पता है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। मोस्ट वेलकम जी। वैसे इतना खूबसूरत सवाल पूछने पे मैं आपको दाद दूंगा। ये देखे ना, ये जहन ने नोट किया कि यार ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए, इसका मतलब तो पूछना चाहिए। अब चूंकि नहीं मालूम था, देखे आपने दरियाफ्त किया तो मुझे भी कुछ पुरानी यादें ताजा हुई, और मैंने उसको देखे ना कुरान ही की दो हवालों से उसे वाजे कर दिया। इसी तरह हर जगह, अब जैसे ये देखे ना, कहा लिमा यकुलून माला ताफालून, मत बोलो वो जो तुम करते नहीं हो। अब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक ऑर्डर है। अब इसको गौर करें तो ये एक नतीजा है। अब इसके दलाइल क्या हैं वो आपने खुद सोचने। जी जनाब अली, वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर सवाब और गुनाह कुछ नहीं होता तो जो हम कहते हैं कि दो फरिश्ते जो हमारे बैड डीड गुड डीड स्क्वाट करते हैं, तो सर
ये देखें हमारे उलझाव हैं और कुछ भी नहीं है। सवाब का मतलब है अजर, इट कुड बी गुड फॉर द और इट कुड बी बैड फॉर आर बैड डीड्स। सोबुल काफिरीन का लफ्ज तीसरे पारे में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि कुफार को सवाब मिलेगा, यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा। सवाब का मतलब है रिवॉर्ड। देखें, जजा और सजा ये रिजल्ट्स हैं। नेकी और बदी क्या है, अगर आपका काम, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपके आमाल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ अल्लाह है तो ये नेक है, अगर दे आर अगेंस्ट कंट्रेरी टू द नॉर्म्स ऑफ अल्लाह तो उनके नताइज जाहिर है कि अच्छे नहीं निकलेंगे, उसको सजा कह ले। अब वो फरिश्ते जो हैं वो असल में क्या कर रहे हैं, वो फरिश्ते दो कैमरे हैं, दोनों में फिल्टर लगा हुआ है, एक अच्छी बातें रिकॉर्ड कर रहा है एक बुरी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छाई का मायार ये है कि आपका जमीर किस पे मुतमईन है, बुराई का मायार ये है कि अल्लाह और आपका जमीर, जमीर जो है वो अल्लाह को इंडिकेट करता है। जमीर असल में क्या है, जमीर ये बताता है कि अल्लाह को क्या चीज पसंद है, और जमीर वो गैगर काउंटर की तरह इंडिकेट कर रहा है कि अल्लाह मियां को ये चीज पसंद है तो सुई दाईं तरफ आ जाती है, अल्लाह को ना पसंद है सुई बाईं तरफ चली जाती है। तो आप अपने जमीर की रोशनी में, इसे नूरे बातिन कहा है, ये नूरे बातिन की रोशनी में आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर चल रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो फरिश्ता उसका रिकॉर्ड बना रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है
जी।
अब जब ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाती है अच्छे की भी बुरे की भी, तो ओवरऑल एक फिल्म बनती है, 24 घंटों में से आपने 10 मिनट जो है कोई गलत बात कोई गलत किया और बाकी 23 मिनट और फर्ज करें कि 23 घंटे और 20 मिनट जो है वो आपने अच्छा किया या न्यूट्रल रहे या कुछ नहीं किया, ये दोनों रिकॉर्ड हो गए ना। अब जब हम ऊपर गए आलम एराफ में तो क्या होगा, यही दोनों फिल्में डिस्प्ले होंगी, दोनों फिल्में डिस्प्ले होंगी। जब ये दोनों फिल्में डिस्प्ले होंगी तो जो बड़ी होगी वो हावी हो गई। अब आप अपनी जिंदगी जो यहां गुजार के गए, आपने जो यहां तजर्बात हासिल किए, जो खुशी यहां इकट्ठी की, वो वहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। आप यहां परेशान रहे, दुख में रहे, नेगेटिव सोचते रहे, ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज बुरी लग रही है, तो आपके एहसासात और कैफियात में नेगेटिविटी नुमाया रही। अब जब आप ऊपर गए तो वही फिल्म आपको दोबारा देखनी पड़ रही है, लेकिन हवास की बढ़ी हुई रफ्तार के साथ देख रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन भी उसी तनासुब से बढ़ गई। जैसे फर्ज करें यहां आपने एक मिनट खुशी का गुजारा तो वो ऊपर जाके 70 मिनट बन गए, इसी तरह तकलीफ का एक मिनट ऊपर जाके जब 70 मिनट बन गए तो आपका क्या बैंड नहीं बजेगा, यहां बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वहां कहां से कर लेंगे। ये जो कैफियत है इसका नाम जजा और सजा है। वाजे हो गई बात
जी सर।
यानी हमने यहां जो माइंडसेट बना लिया उसके मुताबिक हमारी आइंदा जिंदगी बसर होनी है आलम एराफ में, यानी मरने को मुंतकिल होना कहते हैं, नई दुनिया में जाके हम इसी माइंड सेट के साथ, इसी थिंकिंग पैटर्न के साथ आगे जिंदगी बसर करेंगे। अगर उसमें खुशी है, उसमें तमानियत है, तो मुझे बताएं कि वहां पे इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ गई और शिद्दत भी बढ़ गई, तो ये जजा कहला रही है, इसी को नेकी कहा गया है।
जी
सॉरी, बात वाजी हो गई
जी सर, समझ आ गई बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर।
अल्लाह खुश रखे आपको, इतना प्यारा सवाल पूछा। देखें ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बुनियादी सवालात हैं जिन पे हमारे सारे उलझाव बने हुए कि हम इसको सोचते नहीं है। जब असल पता चल गया कि भाई असल चीज है जमीर का मुतमईन होना या गैर मुतमईन होना, अगर जमीर मुतमईन है तो आप खुश हैं, अल्लाह भी खुश है। अगर आपका जमीर किसी चीज पे आपको पिंच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये सजा है, और यही पिंचिंग जो है यही अल्लाह को भी नापसंद है। अल्लाह कहता है अपने जमीर को की रोशनी में आपने चलना है, क्योंकि जमीर क्या है, नूरे बातिन, और नूरे बातिन क्या है, वो अल्लाह की तरफ से एक गाइडेंस का प्रोग्राम है। तो गॉड गाइड्स अस कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखे ना, अल्लाह ने हमारी गाइडेंस का वादा किया जब कहा कि निकलो जन्नत से, वाहबित मुस्तकर फिल अर्द, जमीन में करार पकड़ो, मतान इलाहीन, ये कुछ मुद्दत के लिए, और साथ में कहा कि मेरी तरफ से हदायत आती रहेगी। अब इस हदायत का अल्लाह ने दोहरा निजाम कायम किया, एक आपके अंदर एक मीटर इंस्टॉल कर दिया, जो मीटर की मैंने बात कही ना कि जब आप अच्छा करते हैं तो सुई दाईं तरफ और जब बुरा करते हैं तो बाईं तरफ, ये इंडिकेटर लगा दिया अंदर, उसको जमीर कहा। और दूसरा आपको वही की तर्जों में अपने अंबिया कराम के जरिए, नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए हमें गाइडेंस दी, हमें कुछ रूल्स दिए। अब जैसे कुरान क्या है, कुरान हकीम वही है ना। अब हमने कहा ये तो हजूर अलैहिस्सलाम पे नाजल हुई थी, बस बात खत्म कर देते। अरे भाई, हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद पे नाजल होने वाली वही को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके मेरे और आपके लिए अवेलेबल कर दिया, बल्कि हम तक पहुंचा दिया, ऐसा सिस्टम बनाया। अब आप और हम क्या पढ़ रहे हैं, वही ही तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने अंदर उतरने दे रहे नहीं, हम तो कुरान नाजरा पढ़ के सवाब कमा रहे हैं। यहां से सारी गड़बड़ हो गई, ठीक हो गया ना
जी? जी।
यानी के कुरान को अगर आप समझ नहीं रहे तो गोया वही नहीं समझ रहे। जब आप वही समझेंगे तो आपका जमीर मजीद पॉलिश होगा या क्या? नहीं
होगा सर।
तो इसलिए जब हम वही की तर्जों में को शौरी तौर पे हम वही की तर्जों को अपना रहे हैं, तो गोया कुरान को समझना क्या हुआ भाई? वही को समझना हुआ। हम इतने ब्लेसड, इतने ब्लेसड उम्मत हैं, इतने ब्लेसड लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बे करीम ने दोहरे निजाम हदायत से सरफराज किया, लेकिन हमने क्या किया, अपनी जहालत से आंखें मोड़े हुए हैं, बंद किए हुए। नतीजा हमें ये गुनाह और सवाब और हलाल और हराम और ये और वो इन्हीं चक्रों में उलझाया हुआ है। नतीजा ये कि हम इनकी तह तक नहीं पहुंच रहे। हालांकि देखे ना, जिंदगी क्या है, वही जिंदगी है जो आप घरों में बसर कर रहे हैं, वही आप पैदा हुए, बड़े हुए, बचपन गुजारा, खेलते कूदते खुशी खुशी, अब जवान हुए, फिर बड़े हुए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर फौत हो गए, तो क्या कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सारे जिंदगी के आमाल और अफाल हम तय करते हुए क्या अल्लाह की तरफ मतवजो अगर रह के करें तो अल्लाह के साथ नहीं वाबस्ता हो गए हम? बस इतनी सी बात है, अगर आप अल्लाह के करीब हैं तो नेकी ही नेकी है, अगर आप अल्लाह से दूर हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, हम दुआ कर सकते हैं।
जी, मेरा एक सवाल है।
इरशाद
सर, बहुत प्यारा आपने एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सुन के।
आई एम सो ऑनर्ड जी,
थैंक यू सो मच सर,
आई एम सो ऑनर्ड। ये आपकी मोहब्बत है कि आप इतने प्यार से बात सुनते हैं, तो मेरा भी जी चाहता है कि जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करूं। जी
सर, सवाल है कि सालिहीन से क्या मुराद है?
सालेह का लफ्ज जो है जी, सालेह का लफ्ज जो है इसकी रूट पकड़े, सला स्वाद लाम है, इसी से लफ्ज सुला भी है, इसी से लफ्ज इस्लाह भी है। बात वाजे हो गई। अगर आप अपने अमल की इस्लाह करते जाएं, अपनी फिक्र की इस्लाह करते चले जाएंगे तो ये आप सालेहीन में आ गए। अपनी
थैंक यू अमल और फिक्र की इस्लाह करते चले गए,
बस इस्लाह आप सुलह करते जाए ना अल्लाह मियां के साथ, जहां जहां आपको अल्लाह से शिकवे हैं वहीं सुलह कर लें अल्लाह से। देखे ना किसी
अच्छा
किसी दूसरे से आपको शिकवा है कि यार वो गलत कर रहे हैं, तो आप सुलह कर लो ना, सुलह कर लो। वो गलत कर रहा है तो आप भाड़ में जाए, वो अपने लिए बुरा कर रहा है, मेरे लिए थोड़ी बुरा कर रहा है, उसने अपनी कब्र में जाना है, मैंने थोड़ी मेरी कब्र में थोड़ी आना है उसने कि वो उसके कीड़े मुझे काटेंगे।
बिल्कुल सर,
तो बस आप सुलह करके चलते जाएं, आप सालेहीन बन गए। नहीं, आपने इतना कीमती बात पूछी है, मैं आपको जरा इसकी थोड़ी सी और इजाजत दें, अर्ज करता हूँ। देखे ना, सास बहु आपस में सुलह कर लें तो घर में क्या हुआ, सालेहीन हो गए कि नहीं दोनों?
जी सर,
और करें
हो गया।
बहन भाई आपस में सुलह करके चलते रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहें, ये सुलह ही है ना। सुलह में क्या होता है, आप भूल जाते हैं कि इसने क्या बुरा किया। भाई दुश्मनी होती है तो सुलह करते हैं, सुलह का क्या मतलब है कि भूल जाओ, बस छोड़ दो उसको, जो हो गया हो गया, आगे चलो। और करें, ये है सालेहीन का एटीट्यूड।
सर ये भी सूरह कहफ में है कि वो काना अबू मा साले, तो उसके बाप जो था वो साले था, उसके लिए खजाना है।
जी जी, तो ये
साले माँ बाप,
साले का मतलब है इस्लाह करने वाला,
इस्लाह करने वाला
जिसने खुद
सर,
को देखे ना, लफ्ज है करेक्शन, इस्लाह का मतलब है करेक्ट करना, करेक्ट। जो ये जो करेक्शंस हैं इन्हीं का नाम है इस्लाह। तो अल्लाह रब्बे करीम उनके एक एटीट्यूड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करते थे, उनकी इस्लाह करते थे। देखिए, हम गलतियों से सीखते हैं, हाँ या नहीं? आप डर के बैठे हुए कहीं गलत ना हो जाओ। आप ये देखें कि एक साहब ने मुझे फोन किया कि जी आप कहते हैं खुद गौर करके समझो, मैं गौर करके तो कोई गलत बात समझूं तो फिर? मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पहले कौन सा सही समझे हुए हो। गलती करोगे ना तो गलती की इस्लाह करोगे तो सालेहीन में चले जाओगे। अल्लाह आपको खुश
रखे।
मैंने आपको एक छोटा सा गुर बताया हमेशा, क्या लफ्ज की जड़ को पकड़े, लफ्ज का मादा होता है, मादे को पकड़े, मादा, ठीक है ना। अब हमारे यहां की मादा होती है। हमारा जहन बस उस मादा तक ही रहता है, लफ्ज के मादा तक नहीं जाता। जी जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम।
कल की नशस्त के हवाले से मुझे जहन में आया, जैसे आपने उसमें कहा था कि कुआं खोदने का, तो ख्याल आया कि जैसे खंदक हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में ना खंदक खुदवाई गई थी, तो पहले तो खंदक को के लफ्ज ही मानी की गहराई समझना चाह रही हूँ, और दूसरा ये जहाँ खंदक खोदी जा रही थी अथाह भी लगे हुए थे, तो उसमें से बड़ा सा मजबूत दिखाई दिया, ये उन लोगों से नहीं हो पा रहा था, तो तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मतलब बुलाया गया और तशरीफ आए, उन्होंने जो जर्फ लगाई उस पर तो उसे चिंगारियां उठी, यानी तीन बार जर्फ लगाई।
जी जी।
एक बार मुझे अभी फिलहाल याद है कि फार्स की कुंजियां गई है बशारत की है, उस तरफ तीन बशारत की उसको रूहानी नुस्खे नजर से समझना चाहेंगे।
देखें खंदक कहते किसे, खंदक बिच को कहते हैं या आप जमीन में एक गढ़ा सा खोदते हैं लंबे रुख, ठीक है। जब वो छोटे छोटे गढ़े हों तो वो मोर्चे कहलाते हैं, उसके अंदर आप बैठ जाते हैं, जब दुश्मन आता है तो उसको अंदाजा नहीं होता कि आगे जमीन में कोई अंदर छुप के बैठा हुआ है। आप वहां से पहले जमाने में तीर चलाते थे, आजकल वो तोप चलाते हैं या बंदूक से फायर करते हैं, ठीक हो गया। खंदक कहते हैं किसी भी गहरी खाई को। अब वो मदीने के गिर्द हिफाजती, मदीने की हिफाजत के लिए हजूर ने मशवरा किया कि ये शहर जो है इसको दुश्मन की यलगार से कैसे बचाया जाए, हमारी मैन पावर इतनी नहीं है, हमारी मैन पावर इतनी नहीं है कि हम उनका मतलब है कि इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को लड़ सकें या हरा सकें। तो ये एक दिफाई हथकंडा होता है, एक दिफाई तदबीर थी क्या के जहां से मतलब एक साइड पे बाग थे तो एक तरफ पहाड़ थे तो उधर से तो दुश्मन नहीं आ सकता था, उसने मैदान की तरफ से आना था, तो उन्होंने शहर के और उस साइड पे जिस तरफ से दुश्मन ने आना था वहां पे गहरी खाई खोदना शुरू कर दी। अब वो फर्ज करे 6 फुट गहरी खाई है, ठीक है, और तकरीबन 8-10 फुट चौड़ी है, 8-10 फुट चौड़ी गहरी खाई और 8-10 फुट गहराई और 8-10 फुट चौड़ाई में एक लंबी गढ़ा खोद दिया। इसका फायदा यह हुआ कि भी दुश्मन आएगा घोड़े पे आएगा, घोड़ों पे या किसी भी उस पे, तो वो जब 6 फुट नीचे गढ़े में नहीं उतर सकता, 8-10 फुट की छलांग नहीं लगा सकता, अगर छलांग लगाएगा तो कोई एक आदि लगाएगा तो उसको निमट लिया जाएगा। तो उस खंदक को हजरत सलमान फारसी के मशवरे पे बनाया गया, यानी उन्होंने जब वो मीटिंग हो रही थी कि भी दुश्मन आ रहा है तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भी खंदक खोदी जाए, ये हजरत सलमान फारसी का मशवरा था। अब बीच में साथ साथ देखें अल्लाह रब्बे करीम, वो क्या कहते हैं, रूहानी बंदा जो होता है वो हर हाल और हर काल में ही रूहानी बंदा होता है, है? अब उन्होंने ये मीटिंग की, देखें दुनिया में ये सारा निजाम चला रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो उसको निमट भी रहे हैं, तो उसके साथ दिफा भी कर रहे हैं, ये थोड़ा ही है कि बस वो अल्लाह अल्लाह करते रहे, तस्बीह हाथ से पकड़ के बैठ गए कि जी वो हमला कर रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं, जो कर सकते हैं वो उन्होंने किया। अब वो चूंकि मैंने अर्ज किया कि रूहानी बंदा हर हाल में रूहानी बंदा है, अब वहां एक चट्टान निकल आई, जब जमीन खोद रहे थे तो एक बड़ी सी चट्टान निकली, अब वो चट्टान को तोड़ना था तो हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद लिया फावड़ा, वो जो गैंत्री जिसे कहते हैं जिसके आगे चोंच वाली वो होती है ना लोहे की, जी उसको आप तबर कहते हैं पश्तों में, ठीक है। अब जब उसने मारा, उन्होंने मारा तो वो इतनी मजबूत थी कि वो उचट गई और उसमें से चिंगारियां निकली। अब मैं और आप होते तो जाहिर है कि हमें क्या पता कि ये क्या चिंगारियों से, तो उनका जहन उन चिंगारियों को देखकर तो लाशऊर से मुत्तसिल हो गया और उन्हें वो चिंगारी अल्लाह की कोई तजल्ली दिखी कि भाई ये चिंगारी, और उसके साथ ही उनके जहन ने देखा कि मुसलमान जो हैं इस जंग को भी जीतेंगे, इस जंग को फतह करेंगे, फिर वो सरवाइव करेंगे, फिर वो दुनिया में इतना फैल जाएंगे कि कैसर और कसरा यानी रूम और ईरान जो दो सुपर पावर्स हैं इनको भी कंकर कर लेंगे। तो उनके जहन में उस लम्हे वो इत्तला जो थी वो वारिद हुई और उन्होंने उसका इजहार कर दिया कि हम जिस साबित कदमी से अल्लाह की राह पे चल रहे हैं अल्लाह रब्बे करीम हमारी मदद करेगा और हम एज ए उम्मत एज ए नेशन दूसरों को डोमिनेट करेंगे। ये इत्तला आई उनको। जब उन्होंने मारा एक दफा तो वो एक चिंगारी निकली, वो दूसरी दफा मारा। अब देखे ना रूहानी बंदा हर हाल और हर काल में रूहानी है, चाहे वो तबर चला रहा है चाहे वो गैंती चला रहा है। गौर करें अल्लाह ने उनको मतलब है कि ऐसा डिजाइन किया था ना, अल्लाह रब्बे करीम ने उनके जहन को ऐसा बनाया हुआ था कि वो गैंती चलाते हुए भी ऊपर की दुनिया में देख रहे थे। और यही असल में अंबिया कराम के तर्ज़े फिक्र को अपनाना जो है सुन्नत कहलाता है। हमने सुन्नत का मतलब ही कुछ और रखा हुआ है। जी आ गई समझ?
कोशिश जारी है। अल्लाह
खुश रखे। जी नहीं, आपके सिलसिले के अगराज व मकासद में और उसके बाद सॉरी कवायद व जवाबित में पहला जाब्ता यही है कि हर हाल और हर काल में अपना रूहानी तशख्खुस बरकरार रखें। और आपने माशाल्लाह ये सनद निकाली हजूर अलैहिस्सलाम की हयात अकदस से कि देखें वो बज़ाहिर क्या कर रहे हैं, मजदूरों वाला काम कर रहे हैं लेकिन जहन उनका कहाँ अल्लाह से मिला हुआ। और अल्लाह मियाँ उनकी इस काविश पे खुश होके उनको बशारत दे रहे हैं। ठीक हो गया?
यस सर, थैंक यू सो मच सर।
जी वालेकुम सलाम।
सर वो सूरह नहल की आयत है 48 अवलम यरो इदा मा खलक अल्लाह मिन शय इतफय्यु बिलालु अनि यमीने व शिमाइले सुजदन लिल्लाह व हुवा वहम दाखिरून। क्या नहीं इन्होंने देखा इस बात को कि जो भी अल्लाह ने पैदा की कोई चीज झुकता है इसका साया दाएं और बाएं तरफ से सजदा करते हुए अल्लाह को और वो इसके सामने आजीज है।
जी जी इसमें क्या मुश्किल है?
सर ये जो साया झुकता
देखे ना सूरज की हरकत, सूरज की हरकत, सूरज की हरकत का नाम है साया। और करें सूरज की हरकत हो रही है वो दाएं से बाएं को जलता है, वो मशरक से मगरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज का साया किधर को जाता है?
हाँ, कभी दाएं कभी बाएं।
ठीक हो गया ना। अब सीधी सी बात ये है कि सूरज की हरकत के साथ साथ चल रहा है सारा निजाम। और सूरज किसको कहा है? जाहिर है रूह आजम को कहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे साए की मानिंद हैं, यानी ये सब फिक्शन है। ये जो हजूर मुर्शिद करीम बार बार हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि यहाँ सारा कुछ फिक्शन है, तो अल्लाह क्या कह रहा है? इसके अल्फाज क्या हैं? क्या तुम नहीं देखते? क्या नहीं है ऐसा? यानी तवज्जो किधर दिलाई गई कि भाई ये साय को देखते हुए अगर आप सिर्फ साय को ही देखते रहें तो साय की बुनियाद क्या है? साय की बुनियाद सूरज है ना जी। तो ये सारा काम दायां बायां हिलना जुलना सब कुछ जो है, अब ये सजदा रेज होकर अब वो चूंकि साया जमीन पे पड़ा होता है यहां से एक नुक्ता निकाल दिया कि वो सरेंडर किए हुए, यानी जो रूहे आजम की रोशनी में काम होगा वो सबमिशन के साथ होगा।
सही।
لطف آیا کہ نہیں؟ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے اس میں. اب ہم صرف سایوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، سایوں کی حقیقت کو سمجھے. سایہ جو ہے وہ اصل میں فکشن ہے، اور وہ فکشن جو ہے وہ موو کر رہا ہے. فکشن یعنی سایہ، لیکن آپ غور کریں کہ وہ لیٹا ہوا ہے زمین پہ. یعنی جب آپ روح اعظم کی روشنی میں کام کریں گے تو آپ سبمٹ کر کے کریں گے. اللہ کا انعام ہو گیا.
جی سر، ایک سوال اور ہے.
ارشاد،
آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا دل کو مقام ہے جہاں سے خون آ کر واپس پلٹتا ہے، اور ذہن میں ایک نقطہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعات آتی ہیں اور واپس پلٹتی ہیں. تو سر ہم جو مراقبہ کرتے ہیں سیاہ نقطے کا، کہ ہمارے دل میں سیاہ نقطہ ہے جو اینٹی کلاک وائز گھوم رہتا ہے، تو ہم اس کا مقام کہاں مطلب دل میں یا
ظاہر ہے؟ یہ دیکھیں اصل میں تو ہمارے ذہن میں وہ چل رہا ہے نا. اب دل کا تصور یہ ہارٹ والا دل کرے، یعنی یہ جو پمپنگ عضو ہے، یا آپ اپنے ذہن کے اس مقام کو تصور کریں جہاں پہ یہ ساری اطلاعات آ کے واپس پلٹ رہی ہیں اور وہاں پہ ایک سیاہ نقطہ گھوم رہا ہے. اب آپ نے اپنی سہولت کے لیے ایسے قلب کی طرف توجہ کی، دل کی طرف، یعنی گردن جھکا کے بائیں طرف آپ نے سمجھا کہ ادھر دل ہے. اب آپ غور کریں کہ دل جو ہے جسمانی نظام میں سب سے پہلے تخلیق ہونے والی چیز ہے. پہلے رگیں بنتی ہیں جن میں خون دوڑتا ہے، پھر دل بنتا ہے. دماغ تو بہت بعد میں بنتا ہے، ہاں یا نہیں؟ یہ سیاہ نقطے کو آپ جہاں پہ بھی تصور کریں وہ سیاہ نقطہ ہی ہے، کیونکہ اصل چیز تو تصور میں گھومنا ہے اس کا. جب آپ تصور میں اس کو روٹیٹ کریں گے یا کسی چیز کے گرد ریوالو کریں گے تو وہ ایک مرکز ہوگا جس کے گرد وہ گھوم رہا ہے. تو جب آپ کا ذہن کسی مرکز کی طرف اور سیاہ نقطے کو دیکھیں گے، تو جیسے آپ قلم سے لکھتے ہیں تو ایک نقطہ لکھتے ہیں نا، پھر اس کو کھینچتے ہیں قلم کو، تو وہ ایک نقطے کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، جڑتے جڑتے وہ پورا الف بن جاتا ہے. تو یہ سارا نظام ایک سیاہ نقطے کے ذریعے وقوع پذیر ہو رہا ہے. جب آپ سیاہ نقطے کا مراقبہ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم صرف وہ منظر کشی میں کھوئے رہتے ہیں، اس لیے آگے ذہن بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟
نیٹورک میں پرابلم ہے.
چلیں، آپ نے تو بات سن لی نا، سب نے سنی، آپ جن کو سنائی دی وہ تو
جی.
اور کوئی سوال؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ جو ابھی روحانی تشخص کی ہمارا پہلا سوال جو جواب کا ہے، تو سر اس کو ذرا سا پلیز آپ ایکسپلین کر دیں گے، ہر حال اور ہر کال میں اپنے روحانی تشخص کو برقرار رکھیں.
میں روحانی تشخص کی ڈیفینیشن عرض کر دیتا ہوں آپ کو. روحانی اور پھر تشخص، تشخیص
جی سر،
یعنی شناخت. دیکھیں نا، میں نے ایک دفعہ شخصیت کے حوالے سے کہا کسی شخص کی خصوصیات کو شخصیت کہتے ہیں. یاد آیا یہ لفظ؟
جی سر.
یعنی
جی سر،
شخص کی خصوصیات تشخص کہلاتی ہیں. یعنی جو خاصیتیں ہمارے اندر ہیں وہ ہمارے خصائص کہلاتے ہیں یا خصوصیت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
جی.
یعنی خاص چیز جو آپ میں ہے کسی اور میں نہیں ہے. غور کریں خصوصیت کیا ہوئی. اب پانی کی جو خصوصیات ہیں وہ ظاہر ہے کہ مٹی میں نہیں ہیں، جو مٹی کی ہیں وہ ہوا میں نہیں ہیں، اسی لیے یہ ڈیفرنٹ ہے.
جی سر،
ہر چیز اپنی खासियतों की बुनियाद पे आइडेंटिफाई होती है। नमक की खसूसियात चीनी से अलग हैं, यानी उसके खवास खास होना। अब रूहानी तशखुस क्या है, ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका रूहानी तशखुस है। जितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही आपका रूहानी तशखुस उभरेगा। दोबारा सुने, जितना आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होगी उतना ही आप रूहानी हो जाएंगे। अब हर हाल और हर काल को समझ लें, ये हाल हालत को कहते हैं और काल बोली हुई बात को, मुंह से अदा किया हुआ जुमला जो है ये काल कहलाता है।
काल कहलाता है,
ठीक है। कुल कुल हो अल्लाह हो अहद, कुल यानी काल, ये काल की बात आ रही है, ठीक है। जो मुंह से बातें आप अदा करते हैं उनमें से कितना नजर आ रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं?
जी सर।
अब आप देखें कि आप कोई काम कर रहे हैं,
जी सर,
और उस काम के करने में आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं? आप मसलन, मैंने देखा है कि बाज खवातीन झाड़ू देने में भी सलीके से काम लेती हैं। यानी कि अब ये हाल हो गया, ये झाड़ू दे रही है, ठीक है। अब झाड़ू देना हाथ का काम है, लेकिन उसमें भी अगर सलीका और सफाई हो तो वो भी एक हुनर बन गया, हाँ या नहीं?
बिल्कुल ऐसा ही है।
अब इसी तरह आप हंडिया पका रही हैं और हंडिया पकाना जो है वो एक फोड़पने से पकाया जाता है और एक हुनरमंदी से पकाया जाता है। क्यों? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आपका क्या होता है, हर चीज में एक हुस्न और सलीका आ जाता है, नतीजा जायका भी अच्छा हो जाता है। तो हर हाल और हर काल में आप पता नहीं इसको कहाँ लेके घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये आपके डेली काम जो हैं ये सब इसी हाल और काल में आते हैं।
जी सर,
तो इन में अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिख रही है तो ये क्या हुआ, बस ये जाप्ता नंबर एक जो है वो असल में आपसे क्या फरमाइश कर रहा है, अप्रोच एवरीथिंग इन योर सेड एंड डन थिंग विद ए क्लियर हेड, क्लैरिटी ऑफ योर विजन, क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। ये आपने बहुत ही अच्छा किया, इतना प्यारा, ये मतलब बुनियादी सवाल है। देखे ना, जाप्ता नंबर एक पढ़ सारे रहे हैं,
पढ़ सारे रहे हैं सर, लेकिन क्लियर नहीं है।
किसी को ये बाते नहीं है कि मैं हाल और काल में अपने रूहानी तशखुस को कैसे बरकरार रखूं। आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी क्लैरिटी की हामिल है, आप जो बात सुन रहे हैं कितना क्लियरली समझ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है कि आप कितना क्लियरली उसको अंडरस्टैंड करते हुए समझ रहे हैं। ये जो हम दुनिया में रिश्ते निभा रहे हैं ये सारे के सारे काल में हाल में ही तो आते हैं।
बिल्कुल आते हैं।
तो रूहानी तशखुस क्या हुआ कि अगर आप उन रिश्तों को मैच्योरिटी के साथ, सोबर्टी के साथ इस तरह हैंडल करते हैं कि कहीं किलकिल नहीं होने देते।
ओके सर, सही हो गया,
मजीद वजाहत हो गई ना
जी सर।
यहाँ पे एक जुमला सुन रखे हैं, आप सब बहुत काम देगा। घर में किलकिल हो तो रिजक सूख जाता है। कभी कोशिश करें कि घर में किलकिल ना होने दें, आप देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि वसाइल खुद ब खुद फराहम होंगे।
बिल्कुल ऐसा है सर, ऐसा ही है।
बहुत शुक्रिया जी, आपने तस्दीक करके मेरा दिल और बड़ा कर दिया। एक वो दिल का बड़ा होना इन्फॉक्शन कहलाता है और एक दिल का बड़ा होना
सही हो गया सर। सर ये तजर्बात और ये मुशाहदात ही तो हो रहे हैं सर,
अल्लाह का करम है, देखेंगे अल्लाह ही करवा रहा है। आप इस चीज को ज़हन नशीन कर लें, यहाँ दरो बिस्त सब कुछ अल्लाह ही है, अल्लाह ही अल्लाह
है,
अल्लाह ही आपको वो ख्यालात देता है, अल्लाह ही आपको एहसासात देता है, अल्लाह ही आपको जज्बात देता है, अल्लाह ही उनको इंजॉय करवाता है और अल्लाह ही आपको उन पे मतलब है आपकी खुशी पे खुश होता है,
खुशी पे खुश होता है और ऐसा होता है सर
बेशक होता है जी। यहाँ पे ज़ेली तौर पे बात सुन ले, अल्लाह मियां आपको खफा देख के खुश नहीं होते, हमारे यहाँ कहते हैं रो रो के दुआएं मांगो। आप गौर करें ना, बच्चा जो है वो अगर रो रो के माँ से बात करे तो माँ कितनी देर बर्दाश्त करेगी, वो जब बात करे रो के करे, जब बोले रो के बोले, हैं माँ कितनी बेजार होगी, और वही बच्चा खुशी खुशी बात करे माँ को कितना अच्छा लगेगा।
सर ऐसा ही है, तो इसमें एक थोड़ी सी कैफियत ये होती है कि एक जहाँ पे तशक्कुर का और ममनूनियत का एहसास होता है तो उसमें भी आंसू आते हैं सर।
आंसू आने की तो बात ही नहीं हो रही, रोने की बात हो रही है, रोना और चीज है, आंसू आना और चीज है। गुदाज में हर वक्त आंखें भीगी रहती हैं बाद लोगों की, मैंने देखा है हमारे पेशावर मुराकबा हॉल के इंचार्ज और हजूर मुर्शिद करीम के खलीफा मजाज, वो अब्बा को देखते हैं और उनकी आंखें ही नहीं थम रही होती, वो अब्बा का जिक्र करें उनके सामने तो उनकी आंखें बह रही होती हैं।
जी सर,
ये गुदाज है, ये उनके दिल का वो गुदाज है, इसे गुदाज कहते हैं। अब देखिए ना, गुदाज का इजहार कैसे होगा, आप अल्लाह की मोहब्बत में गुदाज में चले गए और आपकी आंखें बहना शुरू हो गई, क्या हो रहा है? वही बात, करंट्स जो हैं वो केमिकल स्टिमुली बन रहे हैं और फिर वो मोटर इम्पल्सेस बन रहे हैं।
जी सर,
अब इसके पीछे अब आप रोने की बात कर रहे हैं, एक बच्चे को बच्चे ने चांटा मारा वो रो रहा है, ये गलत है, उसे रोना नहीं चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए, अब मौका ही क्यों दिया उसने चांटा मारने का। ठीक हो गया ना जी?
जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर।
अब इस पे एक जुमला और भी सुन लें, चूंकि ये आपके शोबे से ताल्लुक रखता है, अगर खावन जो है वो बीवी के साथ गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब है बीवी मौका दे रही है ना, वो तब्बत यदा अभी लहब वाली आयत सूरत में हमने वजाहत की थी ना कि बीवी जो है वो उसके लिए हमाल तल हतब ईंधन लाती है और उसे भड़काती है। इसको कंट्रोल करेंगे तो बस साले हीन में भी घुस जाएंगे, सवाब ही सवाब कमाएंगे।
जी सर, सही हो गया सर
जी,
बहुत शुक्रिया सर।
आपका शुक्रिया जी, इतनी शफकत से, इतनी प्यार से आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं कि दिल खुश हो जाता है जी। और किसी ने कुछ पूछना है?
सर मेरे ख्याल से सबके सवाल हो गए हैं, जो सवाल करते हैं वो कर चुके हैं।
चलें, रहती है बात फिर जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे।
थैंक यू।